ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में गढ़वा में चुनावी रैली में हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर चाईबासा में भी एक रैली करेंगे। झारखंड में दो चरण में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य में प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। राज्य में 13 और 20 नवम्बर को मतदान होगा। उधर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है। राज्य में 288 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए 29 अक्टूबर को 7,994 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे। 30 अक्टूबर को हुई जांच के बाद 7,073 प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने बताया है कि 921 उम्मीदवारों के आवेदन अवैध पाए जाने पर निरस्त कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। राज्य में मुकाबला सत्ताधारी महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच है। सत्ताधारी महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीबी शरद चंद्र पवार मुख्य पार्टियां हैं। हालांकि कुछ छोटी पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में आज एक बस के गहरी खाई में गिरने से 23 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। खबरों के अनुसार गढ़वाल से कुमाऊं जा रही यह बस कूपी गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में हताहतों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि जब ये बस 200 मीटर गहरी खाई में गिरी तो बस में 40 यात्री सवार थे। पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल के जवान तलाश और बचाव अभियान के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने वन्य जीवों के हमले में मृत व्यक्तियों के परिजनों के लिए मुआवजे की राशि 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। उमरिया जिले के बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य के पास हाथी के हमले में दो व्यक्तियों की मृत्यु के एक दिन बाद यह घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उमरिया में हाथी के हमले में मारे गए दो व्यक्तियों के परिवारों को 25 लाख रुपए का बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। ये 6 नवंबर को संपन्न होगा। इसमें गठबंधन के विभिन्न प्रयासों और पहल पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिनसे ऊर्जा सुलभ कराने, सुरक्षा और परंपराएं प्रभावित होंगी। सदस्य देशों में सौर ऊर्जा अपनाने और सौर तैनाती में तेजी लाने के लिए वित्त व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये दूतावास क्वींसलैंड के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाने तथा व्यापार बढ़ाने और भारतीय मूल के लोगों को सुविधा पहुंचाने में योगदान देगा। विदेश मंत्री ने क्वींसलैंड के गवर्नर डॉक्टर जीनेट यांग से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और क्वींसलैंड के बीच आर्थिक, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। अमेरिका में कल 47वें राष्ट्रपति का चुनाव होना है। इसे देखते हुए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इस बार मुख्य मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस के बीच देखा जा रहा है। चुनावों में 7 करोड़ से अधिक मतपत्र मेल द्वारा शुरुआती मतदान स्थलों पर पहले ही डाले जा चुके हैं, जबकि यह आंकड़ा वर्ष 2020 में 10 करोड़ 15 लाख शुरुआती वोटों से कम है। हालांकि ये वर्ष 2016 और वर्ष 2012 में डाले गए शुरुआती मतपत्रों से अधिक है। इस चुनाव में 7 स्विंग राज्य नेवादा, एरिजोना, उत्तरी कैरोलिना, जॉर्जिया, विस्कॉन्स, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोटों के साथ 270 या अधिक वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार जीत जाएगा। दोनों उम्मीदवारों को जीत हासिल करने के लिए कम से कम 3 स्विंग राज्यों में जीत की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 3 से 9 तारीख तक असम में मनाए जा रहे भाषा गौरव सप्ताह के लिए राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने भाषा गौरव सप्ताह के बारे में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के साथ पोस्ट को साझा किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।